तो हम जानते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु साक्षात श्री भगवान कृष्ण है। केवल कृष्ण नहीं, राधा कृष्ण दोनों है। तो जब इसी धराधाम में प्रकट हुए इस कलिहत जीव को उद्धार करने के लिए, तो उनके उद्धार के कारण, यद्यपि आंतरिक कारण है, बाह्य कारण है और कारण है, लेकिन आचार्यगण और शास्त्र में भी हम देखते हैं कि श्रीमन महाप्रभु के आविर्भाव होने का एक मुख्य कारण है किसी अद्वित आचार्य, उन्होंने उनको प्रकट करवाए, उनके कारण। ये बात स्वयं श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु अपने श्रीमुख से स्वीकार करते हैं कि मुझे ये नाड़ा बूढ़ा लेकर के आया। नाड़ा, नाड़ा मतलब नाल, जैसे कमल के फूल देखे ना, एक डंडा होता है ना, डंटा, डंटा बोलते हैं, डंटा नाल, उसको नाल बोलते हैं। तो अद्विताचार्य जो हैं वो साक्षात महाविष्णु के अंश हैं, गर्भसाई विष्णु, जिनके निकलता है जिससे पद्मनाल, तो इसलिए उसको नाड़ा बोलते हैं महाप्रभु। वो जानते हैं उनको, ही तो विष्णु है, बोलते हैं बूढ़ा नाड़ा बूढ़ाने हुंकार करके चिल्ला करके मुझे बुला करके लेकर आया। मैं तो सोया था सतदीप में, मुझे बुला कर सब कर लेकर आया। तो सी जैसे हम देखते हैं कि भगवान कभी आविर्भाव हो गए होते हैं, प्रकट होते हैं, तो आने से पहले अपने परिकर को पहले भेजते हैं, माता पिता भाई मामा चाचा सब पहले आते हैं, सीनियर सब, फिर उसके बाद वो अपने साथीगण के साथ आते हैं। ठीक इसी प्रकार जब भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में कलयुग में प्रकट हुए, तो उन्होंने अपने जो वरिष्ठ परिकर हैं, जिसे माधवपुरी, अद्विताचार्य और जगन्नाथ मिश्रा, नित्यानंद, वैसे उनको सब पहले भेजे, पहले उनके परिक्रमा में भेजे, फिर भगवान आए। तो आज से 500 साल पहले जब से अद्विताचार्य देखे कि वो तो भक्त हैं, प्रचार करना चाहते थे भगवान के गुण लीला नाम, तो इतने स्थिति बिगड़ा हुआ था, तो उन्होंने प्रयास कर करके थक गए, नहीं हुआ। और भी जो भक्तगण थे श्रीवास आदि, उन्होंने भी, लोग उनको बहुत क्रिटिसाइज कर रहे थे, नहीं हो पा, तब अंततः अद्विताचार्य तभी जमाने में भक्तों के नेता के रूप में उन्होंने सबको बोले चिंता मत करो, हम भगवान को लेकर ही आएंगे, भगवान को लेकर आएंगे, वो प्रकट होकर प्रचार कराएंगे, फिर हम उनका साथ देंगे, नहीं तो हमसे काम नहीं बनेगा। तो इसलिए संकल्प के प्रतिज्ञा किए, बोले अगर मैं भगवान को प्रकट नहीं करा पाऊंगा इस काम के लिए, तो मेरा नाम मिट जाएगा, मेरा नाम अद्विताचार्य नहीं रहेगा। तो इसे संकल्प करके उन्होंने साधना में बैठे, चिंता कर रहे थे कैसे प्रकट कराऊं, कैसे प्रकट कराऊं, जो सोच रहे थे, तो शास्त्र में उनको एक श्लोक नजर में आया। इसमें इस लिखा था गौतमीय तंत्र में कि तुलसी दल मात्रेण जलस्य चुड़के नवा विक्णितं समात्मानं भक्तिभ्य भक्तवत्सल। उसमें बोला गया है कि अगर कोई व्यक्ति एक तुलसी की पत्ता, तुलसी दल और चुलुक जल, चुलुक मतलब गंडूसी, हाथ में इसमें जितना पानी आएगा ना, आचमन करने के लिए पानी डालते हैं इतने पानी, इसको चुलुक जल बोलते हैं, जलस्य चुलुके नवा, इतने ही पानी और एक तुलसी दल, ये ले करके भगवान कृष्ण को समर्पित करेगा जल तुलसी, तुलसी दल मात्रेणा जलस्य चुलुके नवा, इतने करके जो कि समर्पण, केवल तुलसी और दल और इतने जल को ही भगवान को समर्पण कर देता है, तो भगवान प्रतिबदल में क्या देते हैं, समात्मान, वो अपने आप को दे देते हैं भगवान, अपने आप को विक्रीतम बेच देते हैं। अगर कोई भगवान को खरीदना चाहे तो मोल क्या है, तुलसी दल और इतने गंडूस मात्र चाल, इसी भगवान को मोल खरीद सकते हो। और तुम बेच देता हूँ अपने आप को, किसको बेचते ना, मुझे बेच देता हूँ, और उनके समान तो कोई है ही नहीं। विक्रीतम स्वम आत्मानम, क्यों ना भक्त वत्सल है, भक्त भक्त भक्तों के बीच में भक्तों के इतनी वत्सलता है भगवान में, तो अपने आप को दे देते हैं। तो इस बात को जब अद्वैत आचार्य देखे तो उन्होंने गंगा जल और तुलसी दल ले करके बैठ गए तप करने के लिए। आज अब शिवा संगन में जाएंगे, बोल रहे थे अभय गौर प्रभु, वहाँ है वो स्थान जहाँ पर अद्वैत आचार्य बैठ करके कर रहे थे तप, और उसके प्रभाव से भगवान प्रकट हो गए। तो साक्षात श्री राधा राधा कृष्ण के मिलित तनु से गौरांग महाप्रभु को इस धरती पर प्रकट कराने का जो मुख्य श्रेय जाता है वो श्री अद्वैत आचार्य को जाता है। वो साक्षात भी कोई जीवतत्व तो नहीं है, वो भी महाविष्णु के अंग हैं। ऐसे उनके बारे में बताया गया है कि उनका जो जन्मस्थान था वो पूर्व बंगाल, बांग्लादेश आजकल जिसको कहते हैं, वहाँ पे था। उनके पिताजी का नाम था कुबेर पंडित कुबेर मिश्र, माताजी का नाम था लाभा देवी, और कुबेर जी ये राज पंडित थे वहाँ का बांग्लादेश में। तभी जो राजा थे, राजा के राज पुरोहित राज पंडित के रूप में कुबेर पंडित ने अपॉइंटेड थे, राजा के वहाँ पंडिताई करते थे। तो जो राजा थे बंगाल में, बहुत सारे आज भी बहुत हैं, शाक्त थे, शाक्त मतलब शक्ति उपासक थे, जय माता दी वाले इसी ग्रुप के थे। तो उन्होंने जब नवरात्र आता ना, जब पूजा होता है, दुर्गा पूजा होता है, तो उनका विशेष उत्सव होता है। जो राजा ही दुर्गा जी के भक्त हैं तो नवरात्र करते थे और चंडी पाठ करना सारे विविध, तो विशाल विग्रह बनता था दुर्गा जी के, और उनके विशेष पूजा होता था। तो जब स्वयं राजा गवर्नमेंट फेस्टिवल है, राजा स्वयं उपवास व्रत रख कर पूजा करते हैं, तो पूरे देशवासी भाग लेते, बहुत बड़ा मेला लगता था। तो जो राज पंडित थे राज पुरोहित, तो ही मुख्य पूजक के रूप में रहते थे, चंडी पाठ करते थे, पूजा करते थे, पूजा। तो लेकिन उनके पुत्र थे, कुंवर पंडित के पुत्र थे, कौन, अभी उनका जो अद्वित नाम नहीं पड़ा था बचपन, उनका नाम था कमलाख्य। क्या नाम था?
कमलाख्य,
आंख, आख्य मतलब आंख, कमल जैसा आंख था उनके, बड़े सुंदर रूप था, इसलिए उनका नाम था कमल नयन या कमलाख्य था, कमलाख्य करके बोलते थे। और उस जो राजा था उनका भी एक लड़का था, बेटा था, राजपुत्र, और दोनों सेम एज के थे, तो क्लासमेट थे, एक ही साथ पढ़ते थे। ये भी राजपुरोहित के पुत्र है, राजा पुत्र है, दोनों एक ही क्लास में पढ़ते थे, सेम ब्याच है। और दोनों यंग थे, आप जैसे उम्र वाले थे, पता नहीं इंजीनियरिंग पढ़ते होंगे कि नहीं, क्या पढ़ते होंगे, संस्कृत पढ़ते होंगे। तो जो सेम ब्याज के थे, तो अब राजपुत्र राजा के घर में, पूरा स्टेट में इतने बड़े फेस्टिवल हो रहा है नवरात्र के उत्सव पर, तो पूरा स्टेट हॉलीडे है, इतना दिन तक छुट्टी दिया जाता है, सब भाग लेते हैं आकर के। विशेष जो अष्टमी पूजा होता है, इसमें पूरा स्टेट के लोग आते हैं, कई बलि चढ़ता है, पाठ होता है, देवी का पूजा जैसे सब आडम्बर में होता है, ऐसे होता है। लेकिन ये हर साल कोई साल पूजा में नहीं जाता था, कौन, कमलाखे नहीं जाते थे। तो ठीक है, नहीं जाते, कोई बच्चा है नहीं, मन नहीं करता, नहीं आया। लेकिन अभी जब HSC एग्जाम के समय आ गया, मतलब 12-14 साल का हो गए। अब उनके मित्र थे, जिगरी दोस्त थे राजपुत्र, अब वो उनको बुलाए, मतलब भैया आओ दोस्त, चलो हम भी चलते हैं, हमारा वहाँ होता है इतने बड़े फेस्टिवल, आपके पिताजी यहाँ मुख्य पूजक है, चलो दर्शन करते हैं, देवी जी को प्रणाम करते हैं, आशीर्वाद लेकर आते हैं। वो नहीं गए, नहीं 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 बहन, वो बोला नहीं, तू मेरा मित्र है, वो हमारे घर में इतने बड़े पूजा फेस्टिवल है, आप किसी नहीं जाएगा, मैं आपको VIP पास में, भीड़ नहीं होगा, अंदर ले जाऊंगा, पीछे सामने फास्ट दर्शन कर, और क्या है? बोला मैं प्रिंस हूँ और तू भी तो मुख्य पुजारी के पुत्र है, हमको कौन सा, हमको VIP पास है, चलते हैं, प्रसादी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, बढ़िया दर्शन कराएंगे। लेकिन वो नहीं जाना चाहते थे, कितने उनको रिक्वेस्ट किए, बाध्य किए, खींचे, तब भी नहीं जाना चाहते थे। बोले ना मुझे बात, मैं नहीं जाऊंगा। अरे क्यों नहीं जाएंगे? ना नहीं। तो जा करके उनके पिताजी को कंप्लेन कर दिए, कौन, राजकुमार ने जाकर उनके पिताजी से बोले, तो बड़ा मंडी नहीं आ रहा है, हर साल नहीं, तो अभी तो कम से कम अरे अभी तो आना चाहिए, अभी नहीं आ रहा है, बोलते ना मैं नहीं जाऊंगा। तो राजा बोला, अरे कोई बात होगा ना, नहीं मैं तो 3 दिन से पीछे पड़ा हूँ, आज अष्टमी पूजा, आज भी नहीं आ रहा। तो राजा ने कोई खबर भेजा सम्मान के साथ, आइए, क्योंकि वो उनके पुत्र जैसा मानता था, तभी भी नहीं आए। तो राजा को घटका, बोले क्यों नहीं आ रहा है, देवी के दर्शन करने मुख्य अतिथि में क्यों नहीं आ रहा है क्या? तो उन्होंने उनके पुरोहित को बोला, उनके पिताजी को, कि आपके बेटा बड़ा उदंड है, उद्धत हो रहा है, उसको बोलो आए देवी की प्रणाम करे, ऐसे कैसे हमारे राज्य में रह करे देवी के प्रसाद से उनके साथ बैरी भाव। वो समझ लिया कि उसे गड़बड़ है, वो नहीं आ रहा है, इस पार्टी का नहीं लगता कि हमारे पार्टी का नहीं, कैसे इसे। तो उनको जब फोर्स किया तो देखा कि राजा तो अबुझा होते हैं, राजा कुछ एक्शन ले सकता। तो कुंवर पंडित ने उस दिन घर में आकर बेटा को बहुत समझा, बोले बेटा चल हमारा नौकरी का सवाल है भाई, तू जाकर एक बार प्रणाम करा, प्लीज चल, माता पिता वो रिक्वेस्ट किए और उनका दोस्त भी राजकुमार भी खूब आकर पीछे पड़ा। तो मना करता था, बोले देखो मैं जाऊंगा, कुछ अघटन घटन होगा, फिर अब दोस्त नहीं नहीं क्या होगा, देवी जी का आशीर्वाद, बोला हम प्रसाद देंगे, खुद माला देंगे, खुद करेंगे, चलो ना आशीर्वाद देंगे, आपके नाम से पूजा करेंगे प्रसाद। बोला मेरे नाम से क्या पूजा करेंगे। लेकिन जब राजा पीछे पड़ गया, राजकुमार पीछे पड़ गया, माता पिता, तब फिर बाध्य होकर ना चाहते हो आना पड़ा उनको। उस दिन अष्टमी बीत चुका था, नवमी और दूसरे दिन ही दशमी था, और लख्य संख्या में लोग भीड़ आए थे, और ठीक मेन मुख्य समय में अष्टमी के दिन पूजा पूर्व होते के मुख्य पूजा नवमी दशमी के दिन तो कंक्लूड होता है। तो उसमें उनको लेकर के आए, और उनके पिताजी स्वयं थे, राजा जी भी स्वयं थे, क्योंकि बड़े ढीट हो गया था, देखते हैं, वो बोलता मैं जाऊँगा तो सभी लोग देखते हैं कि कमलाख्या आज आया पहली बार, इतने साल से नहीं आ रहा था। तब लेकर के सभी लोग खड़े देख रहे हैं, उनके पिताजी भी है, पूजा करेंगे, उनके नाम से माला पहनाएंगे, प्रसाद देंगे, उनको बोला हाँ तो प्रणाम तो करो, आके खड़ा हो गया देखो देवी, बाकी सब प्रणाम किया है, वो प्रणाम नहीं करते, बोले पागल प्रणाम करो, साक्षात देवी विग्रह, आज नवमी पूजा है, प्रसिद्ध है, 3 दिन कर पूजा, प्रणाम करो, प्रणाम ही कर रहा है भाई। राजा जो देवी भक्त थे, रचना बोले ये क्या हो गया, एक तो नहीं आ रहा था, आया तक प्रणाम तक नहीं करता, इतने उदंड है। बोला पंडित जी ये क्या है, आपके बेटा को समझाओ प्रणाम कर रही है। उनका पिताजी बोले बेटा प्रणाम करो, ये माता जी हैं, ये अब सारे पीछे पड़ गए, प्रणाम करो प्रणाम करो प्रणाम करो, क्यों नहीं करेंगे। अब जब हाई प्रेशर हुआ, सभी ने बोले तो बोला देखो आप सब बोलते प्रणाम, नहीं प्लीज प्रणाम करो, ये क्या कर रहा है, देवी रुष्ट हो जाएंगे। तो प्रणाम किए, जैसे प्रणाम किए, प्रणाम करके उठे ही नहीं, प्रणाम करते ही देवी विग्रह चट 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 होकर फट कर कई खंड होकर गिर पड़े, टूट गए, टुकड़ा टुकड़ा होकर गिर पड़े। अरे इतनी बड़ा घटन हो गया, क्या हुआ क्या हुआ क्या, कोई देखे नहीं, पुजारी छुआ तक नहीं, माला तो चढ़ाएगा, पूजा करेगा, थाली लगा हुआ है, टुकड़ा टुकड़ा हो गया। चंडी पाठ तो किए थे, यज्ञ में हवन किए थे, सब तो किए थे, बलि चढ़ाए थे, सब कुछ किए थे, ये क्या हो गया, क्या हो? लोग हाहाकार मच गया, राजा तो बिल्कुल थर थर कांपने लगा, राजकुमार क्या होगा, क्या हो गया? उनको जबरदस्ती प्रणाम कराए, प्रणाम करती देवी विग्रह टूट कर खंड खंड हो गया। अब तो सभी का मूड अब हाहाकार मच गया, सब विपद में क्या करें। इस भीड़ हल्ला गुल्ला मचका के बीच में कमलाख्य भीड़ से चुप से निकल करके भाग गए। अब कहाँ गाय पता नहीं, हो तो देवी को विग्रह उठा करे क्या करे, नूतन विग्रह बनाए, उसी को फेविकल देकर जुड़े, सेट करें, क्या करें। अब पूजा मुख्य पूजा होते, अब तो बाकी दिन एक दिन इसी चिंता भारी पड़े हैं प्रोजेक्ट में। अब ऐसे हुआ, कोई बोला सब कुछ ठीक था, इन्होंने प्रणाम किया तो हाँ हमारे सामने ही वो प्रणाम करते ही ऐसे हुआ, उसको पकड़ो, क्या क्या किसी का कुछ गड़बड़ी तो नहीं किया, बम पम नहीं, उसको बता कुछ जाम तो बोले कुछ नहीं था, सादा सीधा प्रणाम किया, नहीं क्या हुआ, क्या तुम पकड़ो, क्या हुआ, आप ढूंढे कमलाख्य, कमलाख्य है नहीं, वो गायब गायब हो गए। अब सारे देश में खुजा गया, उनके पिताजी वगैरह ढूंढो, है नहीं, वो तो चल दिए वहां से चल के आ गए। वो इसलिए प्रणाम नहीं करते थे, वो जानते थे कि देवी मेरे प्रणाम स्वीकार नहीं कर सकता, उनका इतने पावर नहीं है, हाइड्रोज हो जाएगा उनके लिए। तो इसलिए नहीं जाते थे, नहीं करते, बोले आप लोग ठीक है माता जी भक्त करते करते, लेकिन आप मुझे नहीं जानते हैं, सचमुच आदित्य चरक नहीं जानते थे वो लोग, तो इसलिए बोले मैं तो जानता हूँ मैं कौन हूँ, और आप मूर्ख नहीं जानते मुझे क्यों ले रहे हो उधर। लेकिन उनको फोर्स करके लिए गए तो मिल लिए, देवी जी सर करते होंगे उनको, सर आप क्यों आ गए, सर आप कैसे आ गए, लेकिन उनके भाषा वही समझते होंगे, लेकिन उनको फोर्स किए प्रणाम करो करके। राजा ने सभी ने फोर्स किया, प्रणाम किए, देवी कैसे संभाल पाएंगे, संभाल नहीं पाए, टूट अड़ गए सब। अब आ करके वो वहाँ से पूर्व बंग से आकर पश्चिम बंग आ गए, वहाँ गंगा जी के किनारे अकेले रहने लगे, ये शांतिपुर में, वहाँ से घर छोड़ के आ गए। बाद में कहते हैं कि उनको ढूंढ ढूंढ करके बड़ी बाद में पता चला, उनके माता पिता भी आए, फिर वो आके यहाँ रहने लगे। बोले अब मुझे इसी बात देख के मैं कैसे कर सकता हूँ। तो एक बार उन्होंने गए थे अपने जन्म स्थान में, तो वहाँ एक बार उनके माताजी बोले कि मैं तो पुत्र नहीं हो रहा था, पुत्र प्राप्त करने के लिए कई व्रत नियम किया था, गंगा स्नान करने के लिए व्रत किया था, मैं गंगा जाऊंगा स्नान करके आऊँगा। अरे क्यों मैं गंगा जाएगा स्नान करने के, इतने दूर जाएंगे? बोले कि जब मैं खुद गंगा को ही बुला लूँगा। तो उन्होंने एक बार गंगा को आवाहन किए और गंगा जी स्वयं स्वतः गंगा प्रकट हो गए, कारण सागर, कारण सागर तो वही उनका बेड है, वही सोते हैं, तो कारण सागर प्रकट करा दिए, श्वेत गंगा बहने लगा। तो उनके माता जाके स्नान किए, देखे आज भी वो तिथि में वहाँ लाखों लोग जाते हैं बांग्लादेश में, पाना तीर्थ बोलते हैं कि वो नदी जहाँ आता है वो सफ़ेद हो जाता है पानी, उस दिन कहते चरण बुलाए थे कारण सागर, वही जल प्रकट हो जाता है, तो साक्षात विष्णु थे वो। तो इस प्रकार उन्होंने यहाँ आ करके रहने लगे, यहाँ रह करके उन्होंने ऐसे तो वहाँ पढ़ाई कर रहे थे, यहाँ रह करके नवदीप तो ऐसे ही एजुकेशन का हब था, वहाँ रह करके बाकी शास्त्र पढ़े, भागवत आदि पढ़ करके, फिर यहीं अपने एक टोल खोले, टोल जानते ना, छोटा सा स्कूल जिसको कहते हैं टोल, पहले खोल करके उन्होंने पढ़ाने लगे भागवत। बाकी जगह में तो सब दूसरा दूसरा तो पढ़ाया जाता था, लेकिन उन्होंने वैष्णव शास्त्र पढ़ाने लगे, वैष्णव शास्त्र के तो मुख्य शास्त्र भागवत स्कूल किए, भागवत पढ़ाने लगे। तो बाद में स्कूल का एक ब्रांच मायापुर में भी खोले थे, अब शिवा संगन के पास, वहाँ भी कहते हैं वहाँ भी खोले थे। तो इस प्रकार अद्विताचार्य और तभी उनके समसामयिक जो और भी भक्त थे, जितने भी आपने हो सके हरि कीर्तन करना, भागवत पाठ करना, भागवत चर्चा करना, लेकिन प्राय लोग उसको मानते नहीं थे, अश्रद्धालु थे, देवी पूजक थे और सब इस प्रकार के थे, तो उनको पसंद नहीं होता था। तो आदित्याचार्य ने फिर व्रत लिए कि भगवान को प्रकट कराऊंगा। तो आदित्याचार्य की परिचय के बारे में श्री कविराज गोस्वामी श्री चैतन्य चरितामृत में कहते हैं कि अद्वैतं हरिणाद्वैतं आचार्यं भक्ति संस्नात। बोलते जो अद्वैत है उसका मतलब है द्वैत मतलब दो, द्वैत मतलब दो, अद्वैत मतलब जो दो नहीं है एक ही है। तो इसलिए अद्वैतम हरिणाद्वैतम, अद्वैत मतलब हरि से अलग नहीं है, दो नहीं है, हरि और अद्वैत वो दो नहीं एक ही है। अद्वैत इसलिए कहा गया क्योंकि अलग नहीं है एक ही है। आचार्य क्यों ना, भक्ति भक्ति के अंग को प्रचार करने के लिए उनको आचार्य कहा गया। जो शिक्षा देते हैं प्रशिक्षण देते हैं उनको आचार्य कहते हैं। तो स्वयं आचरण करके जो शिक्षा दे उनको आचार्य कहते हैं। तो इसी प्रकार भक्ति प्रचार करने के लिए आचार्य हैं। वो सख्यात भगवत तत्व है, अद्वैत है, इसीलिए वो कोई अलग नहीं है, वही है। भगवान महाविष्णु सृष्टि सर्जना के समय में जो सृष्टि करते हैं वो तो भगवान ही कारण होते हैं। दो प्रकार के कारण माना जाता है सृष्टि का, एक होता निमित्त कारण, एक होता उपादान कारण। आप जानते हैं निमित्त कारण उपादान कारण किसको कहते हैं? नहीं, ठीक है समझिए। जैसे क्या आजकल बनाते हैं, मटका, मटका सब जानते हैं, मिट्टी का बर्तन, कलश सब जगह है ना आजकल, ना मेटालिक यूज करते हैं। स्टील का, प्लास्टिक, ओ माय गॉड, प्लास्टिक के उत्पादन कचड़ा है, प्लास्टिक के उत्पादन तो कचड़ा ही है। तो शास्त्र में कुंभकार और मिट्टी का उदाहरण दिया गया। कुंभ होता है ना मिट्टी के कलश, गर्मी के दिन तक कम से कम पानी रखकर पीते होंगे, सुराही जगन्नाथपुरी में अभी प्रसाद खाकर आए देखे मिट्टी का बर्तन। तो जो कुंभ होता है तो सुगु बनाने वाला कुम्हार, कुम्हार तो जानते हो ना, जो मिट्टी का बर्तन होता है कुंभकार बोलते हैं कुम्हार। तो जो मिट्टी के घड़ा है उसको अगर कर्म माना जाए, उसी का कारण किसको माने, करता तो भाई कुम्हकार को बोलेंगे ना, भाई वही नहीं बना, नहीं तो कौन बना, हम थोड़ी बने। तो उस कुम्भकार को उस घड़ा का निमित्त कारण बना जाएगा कि वही निमित्त बना, इस कुंभ को बनाने के लिए वो निमित्त बना। लेकिन कुम्भकार ही अकेले हो बोले घड़ा बना तो बना पाएगा? क्या चाहिए उसको? इंग्रेडिएंट चाहिए उसको। इंग्रेडिएंट्स को हिंदी में उपादान कहते हैं। बिना उपादान में घड़ा कैसे बना पाए? केवल कुंभकार कैसे, कुम्हार क्या बेचारा क्या करेगा? जो मिट्टी है, पानी है, जो चक्का है जिसमें डाल करके साइज करता है, बाकी सब ये जो उपादान है वो भी घड़ा के कारण माना जाएगा। ये ना होता तो कैसे बने, वही कारण है। तो इसलिए दो प्रकार का मुख्य कारण है, एक तो जो इंग्रेडिएंट्स उपादान ये भी इसका कारण है, और इंग्रेडिएंट्स खाली हो मिट्टी पानी चक्का आदि हो कुम्हार नहीं हो तब कैसे बने, तो वो भी कारण है। तो दो कारण से एक को निमित्त कारण और एक को उपादान कारण कहा, दोनों की आवश्यकता, दोनों की मिलन से घड़ा का सृष्टि हुआ। ठीक इसी प्रकार संपूर्ण विश्व के सृष्टि में सर्जना में ये दो प्रकार के कारण है, एक निमित्त कारण एक उपादान कारण। तो निमित्त कारण के लिए जो करता है, जो सब जो दी पर्सन जो बनाया वो स्वयं भगवान है, उन्होंने बनाया। ओ, हम कहते हैं ब्रह्मा, वो तो उपसृष्टि किया, सेकेंडरी क्रिएशन, प्राइमरी क्रिएशन तो उनका, क्योंकि ब्रह्मा को भी तो ही बनाए, ब्रह्मा बनाए कि ब्रह्मा को कौन बनाए, वो भी उनको भी बनाए। तो मुख्य निमित्त कारण भगवान है, मुख्य उपादान कारण भी भगवान ही, क्योंकि वो कहाँ से आएगा। जैसे कभी कभी हमारा अंदर एक, आप लोग का अंदर कभी युक्ति होता होगा पहले पेड़ ना पहले फल, पहले कौन सा किसको माना जाएगा, पहले फल आया था, बीज आया ना पहले पेड़ आया, पहले मुर्गी हुआ ना पहले अंडा हुआ, ऐसे कभी कभी आप सोचें कभी, हाँ यह पहले कि मुर्गी के बिना अंडा नहीं हुआ, अंडा के बिना मुर्गी नहीं होगा, फल के बिना पेड़ नहीं होगा, पेड़ के बिना फल नहीं होगा, कौन पहले हुआ? इस तर्क का उत्तर अभी तक तो भौतिक विज्ञानी नहीं दे पाएंगे, वो बेचारा कंफ्यूज हो जाएंगे, वी डोंट नो। लेकिन शास्त्र में कहा गया कि अरे यू डोंट नो, लेकिन यू नो, आप जान लो। सुनो, क्या जान लो? नहीं, मुर्गी और अंडे, पेड़ और फल एक साथ में है, कोई आगे पीछे नहीं है। जो बनाने वाले वो जानता था कि दोनों चाहिए, इसलिए दोनों ही दिया एक साथ में, वो फिर आगे पीछे चलते रहे, दोनों की जरूरत था इसलिए दोनों साथ में दिया। ठीक इसी प्रकार भगवान जो सृष्टि सर्जना किए तो निमित्त और उपादान दोनों बन करके हुए, दोनों ही तो दो प्रकार हो गए, एक निमित्त के रूप में हो गए, एक उपादान के रूप में हो गए। जो निमित्त के रूप में हुए वो साक्षात ईश्वर तो है, दोनों ही ईश्वर है। जो ईश्वर के पाठ निमित्त के बन करके हुए वो कारण सागर में शयन किए, उनको कारण साई विष्णु कहा गया। और जो विष्णु के पाठ उपादान होकर के इंग्रेडिएंट्स बनकर सृष्टि की सृजना किए, वही उपादान कारण बने, वो विष्णु के अंश गर्भ साई विष्णु हुए, सागर में शयन किए कारण से। तो इस प्रकार वो भी विष्णु के पाठ है, दोनों ही विष्णु है, एक निमित्त का जो उपादान कारण वो अद्वितचार्य, उपादान कारण के जो विष्णु ईश्वर के जो उपादान बने वो अद्वितचार्य है, निमित्त बने वो कारण से विष्णु। तो इसलिए दोनों ही अद्वित है, दोनों ही एक ही है, अलग नहीं। इस सृष्टि क्रिया में दोनों के अलग नहीं है। लेकिन कविराज गोस्वामी कहते हैं देखो, साक्षात ईश्वर तत्व सृष्टि सर्जना के एक मुख्य मूल कारण होते हुए भी उन्होंने अपने आप को हमेशा भगवान के दास मानते थे, भगवान की सेवा करने के लिए हमेशा तत्पर होते थे, वही मन में इच्छा रखते थे। इसी के लिए उन्होंने आचार्य बने, भक्ति प्रचार करना क्यों चाहते थे? क्योंकि भगवत इच्छा है, उनके आदेश पालन करना है, वो चाहते हैं कि उनके पार्टी के प्रचार हो, तो इसलिए उन्होंने आए आचार्य बने। अनुसार साक्षात हरि होकर भी, हरि से कोई भिन्न नहीं है, अभिन्न हरि होते हुए भी उन्होंने प्रचार करने के लिए आए, इसलिए अद्वित आचार्य। अब इतने दास अभिमान उनके अंदर आता, तो साक्षात भगवान होकर भी फिर भी जो मूल ईश्वर है कृष्ण, अकेले ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य, केवल वास्तविक मालिक तो कृष्ण ही, बाकी जितने भगवत अवतार भी वो भी सेवक भगवान है, इन बलराम तक भी। तो इसलिए आदित्य आचार्य भी प्रकट हुए अपने आप को भगवान के दास बनाने के लिए, प्रकट होकर के हमेशा वही मानते थे, चैतन्य रदास मही चैतन्य रदास चैतन्य रदास मही दासर अनुदास, हमेशा बोलते मैं श्री चैतन्य जो साक्षात श्री कृष्ण है उनके मैं दास हूँ, उनके दास हूँ, उनके दास ने उनके दासों के अनुदास हूँ, ऐसे अपना आईडी प्रूफ दिखाते थे, ये अपने को मानते थे। इसी के कारण जो केवल हरि को अपना मालिक माने, अपने को हरिदास करके जो परिचय दिए भक्ति विनोद ठाकुर, तो यहां तक कहते हैं आमी कृष्ण दास, यही विश्वास, जिसका इतना ही विश्वास हो जाए कि मैं कृष्ण के दास हूँ और मेरे जीवन कृष्ण की सेवा के लिए हैं, मैं केवल कृष्ण सेवा के लिए मेरे संपूर्ण शक्ति सामर्थ्य जीवन नियुक्त कर देना चाहता हूँ, जो इतने डिसाइड कर लिया इसमें आ गया ये काम करने के लिए, तो उसका दुख हो नहीं सकता जीवन में। एक आमी कृष्ण दास यही विश्वास कर ले आ दुख ना, फिर दुख नहीं हो सकता, सारे दुख का निराकरण हो जाएगा, केवल आपने आप को भगवान के दास के रूप में ले लो। हम सब दास बनना तो चाहते हैं, आप जितने बैठे हैं किस लिए पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, कल स्कूल में है ना, नौकर बनना चाहते हैं ना, सही बात है, ये सब बुरा मानना क्या क्या है, सभी तो है एक ही नाम है और क्या है। सभी जितने कंपटीशन में लगे हैं, जो भी ग्रेड लाने लगे हैं, कोचिंग में जाते हैं, ट्यूशन में करते हैं वो भी आप लगे, जो सारे जस्ट टू हाउट सम हाउ और अदर टू बिकम ए सर्वेंट। यस, लेकिन ये सर्वेंट जिस जो कंपनी में जो मालिक में इधर उधर घूमने, वो उनका कोई गारंटी है कब तक टिकेंगे, क्या आपको देंगे, निचोड़ निचोड़ कर काम करा करके थोड़े बहुत बहुत खुराक को शायद देंगे नहीं देंगे, हताश कर देते हैं। और ज्यादा दिन में नहीं है ना, हम चाहते हैं नहीं चाहते हुए, हम जो नौकरी करते हैं किसी की इच्छा करने के लिए नहीं चाहते हुए, आग्रह नहीं, उत्साह नहीं, इच्छा नहीं, लेकिन कमाई के लिए करना पड़ता है। इसलिए तो सचमुच हमारा बनावटी, हमारा जन्म, हमारे सृष्टि जिसलिए हुआ, जिनकी नौकरी करने से, जिनकी सेवा करने से हम सुखी होंगे, हमारा समस्त समस्या समाधान हो जाएगा, बिल्कुल हम सहज भाव से रहेंगे, शांति प्राप्त करेंगे, वो है हम जो हैं उसी में रहना चाहिए, हम भगवान के दास हैं, वही हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, वैधानिक स्थिति वही है। और हम इसे बिगड़ करके उन्हीं उन्हीं का सर्वेंट बनना चाहते हैं, सर्वेंट तो बनना चाहते हैं लेकिन गड़बड़ का सर्वेंट बनना चाहते हैं। अरे भैया, एक नट है एक बोल्ट है, जो साइज के नट उसी साइज के बोल्ट उसमें टाइट करो, जो नंबर का है 4 नंबर को 4 नंबर लगाओ तो फिट हो जाएगा, और 4 नंबर से 6 नंबर के 8 नंबर का बोल्ट लगाओ वो कसेगा, कितने भी टाइट करो थ्रेड खा जाए अनथ्रेड हो जाए फिर भी ना जाए, होगा ही नहीं। ठीक इसी प्रकार हम जिनके नौकर है, जिनके सेवक है, जिनके लिए हमके कर्मेंद्रिय ज्ञानेन्द्रिय हाथ पैर शक्ति सामर्थ्य बुद्धि वृत्ति सब दिया गया है, अगर वहां पर इस नियुक्त नहीं करे, गलत जगह में करे, तो हाउ कैन इट पॉसिबल, हम भी माफी संभव ही नहीं हम हो सकते। भाई देखो, पानी में रहने वाला जीव एक मछली होता है, जलचर प्राणी, उसको अब अगर पानी से उठाकर ला करके बोले तुझे मैं शांतिपुर में लेकर रखूंगा, अरे एसी हॉल में रखूंगा, अटैच बाथरूम दूंगा और सारे सप्लाई दूंगा, बढ़िया जो प्रसाद चाहो जो जो सुख चाहो सारे सब, वो सुखी होगा ना, बोलेगा भैया मुझे पानी में छोड़ दो भाई, गट्टर क्यों ना हो, ये मुझे जरूरत नहीं, उसको पानी चाहिए क्योंकि जलचर प्राणी है, एक्वाटिक, वो स्थल में रह नहीं सकता, मर जाएगा, दुखी होगा। ठीक इसी प्रकार हम लोग मैटेरियल है ही नहीं, हम भौतिक, हम सब भूत, हमारा शरीर है मैटर, लेकिन हम चित है, हम जड़ नहीं है, चेतन है, स्पिरिट है, स्पिरिट मैटर से कैसे रहेगा, जैसे पानी और जल जैसे स्थल में मिटेगा जमेगा नहीं, तो इसलिए स्पिरिट मैटर में जम नहीं सकता, एंटी मैटर, तो स्पिरिट को स्पिरिचुअल में रहना चाहिए, हम चेतन है चिन्मय जगत में रहना चाहिए, मैटर मटेरियल जगत में रहना चाहिए। जब तक हम स्पिरिट होकर के मैटर के साथ रहेंगे, कभी सुखी हो ही नहीं सकते, दुखी होते रहे, वही हमारी समस्या, हम है स्पिरिट और आ करके मैटर से सुखी होना चाहते हैं, इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता, आप कितने जन्म कितने प्रकार कितने प्रयास कर लो हो ही नहीं सकता, जब तक वापस आए तो रे अब भी हुआ, तो ही उपाय है, तो इसी को प्रचार करने के लिए बड़े बड़े भक्त भगवान स्वयं भगवत दास बनकर आदित्याचार्य इसी काम के लिए आए थे, हम लोग को ये शिक्षा देने के लिए, भैया क्यों टाइम खराब कर रहे हो, करो जयन, हरी बार क्यों सपना देख रहे हैं, जितने जल्दी आ जाओ तभी काम बने, तेरे संग सुखी होंगे शांति होंगे, नहीं तो कितने जीवन गुजार चुके ये भी जाएगा, इसलिए डोंट वेस्ट योर टाइम, तो ही शिक्षा देने के लिए आते हैं। तो भगवान साक्षात भगवान के दास बन करके, और दास भी छोटा होने से नहीं, सीनियर बन करके, भगवान से कितने ऊंचे वयस्क थे, बड़ी उम्र के थे, उनके पिता के सदृश, उनके पिताजी से भी सीनियर है, आदित्याचार्य महाप्रभु के पिताजी से भी सीनियर थे, 39 ईयर्स ओल्ड थे महाप्रभु, 50 साल के ऊंचे, उनका जन्म होते 50 साल के तो इतने एजेड थे, और इतने ज्ञानी थे, कि महाप्रभु जाकर उनसे पढ़े। यस, शिक्षक है, वयस में, ज्ञान में, जाति में, ब्राह्मण आचार्य हैं, किसी माने में श्रेष्ठ थे। और श्रेष्ठ नहीं, उन्होंने तो उनको प्रकट करवाए, पूजा करके साक्षात भगवान को लंडम किए, उनको नीचे उतार ले, अवतरण कराए, वही तो उन्होंने भी एक बार तो ऐसे हुआ था कि भगवान चैतन्य महाप्रभु के एक बड़े भाई थे, उनका नाम जानते हैं क्या था? विश्वरूप। वो भी बड़े वैरागी थे, संत शिष्ट थे। बड़े भाई बलराम होते ना, बलराम का एक नाम है बलभद्र, वो बड़े भद्र होते, जेंटिल होते, और वो अभद्र हैं, छोटे 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 का तो रिकॉर्ड है। हाँ, उनका बायोडाटा देखो तो खतरनाक, कोई भी मिलेगा ये है उनका बचपन रिकॉर्ड, माई गॉड। तो इसलिए ब्रज में भी नेता मानते थे दाऊ जी को, बोले ये ठीक ठाक है, ये तो बड़ा नटखट है, पता नहीं कब क्या करे। हाँ, डेली केस आता था घर में, एवरी डे कंप्लेन। तो विश्वरूप बड़े शांत शिष्ट थे, भद्र थे, तो उन्होंने भी पढ़ने के लिए आते थे आदित्य चरक स्कूल में, भागवत पढ़ते थे। और जो और अच्छे वैष्णव परिवार के हैं, जो अच्छे पढ़े लिखे हैं, जानते, वो भी आते थे भागवत पढ़ने, आदित्य चरक पढ़ाते थे, कई स्टूडेंट बैठकर पढ़ते थे। तो अभी विश्वम्भर उनका नाम था, निमाई जो थे चैतन्य महाप्रभु, छोटे उम्र के थे, भाई 1.5 साल के होंगे, और वो 7-8 साल का होंगे 5-7 साल का, बड़े भाई थे और उनसे छोटे उम्र के थे। तो अभी 1-1.5 साल से तो कपड़ा थोड़ी पहनते हैं, तभी क्या, तभी जमाने तो टेलर भी था नहीं, कुर्ता फुर्ता था नहीं, हाफ पैंट भी नहीं था, ऐसे कचनी एक मार करके घूमते होंगे कि बिल्कुल वो भी नहीं, क्लीन दिगंबर कुछ है नहीं, ऐसे घूमते कपड़ा क्या होगा। तो उनके माता जी सच्ची माता बोलते थे कि बेटा निमाई देखो दोपहर हो गया है, वो तो खाने के लिए रुक, बोले तू खाओ, दादा को बुला लो। बंगाली भाषा में बड़े भाई को दादा बोलते हैं, भाई साहब, बोले भाई साहब को बुला लो, दादा को बुला लो, और लंच करना है, प्रसाद मिलेगा, तो भोजन मिलेगा भाई को बुलाने से, तो इसलिए दौड़ कर जाते थे। बता कहाँ भैया ना, स्कूल में है, तो उनको कौन सा परमिशन लेना होता, चल सीधा नंग धड़ दिगंबर वेश में, कोई कपड़ा थोड़ा पहन कर जाए, भाई स्कूल है, आज टीचर बैठे हैं, स्टूडेंट है, और उसको घर फर्क नहीं पड़ी, सीधा चला जाता, सारे धूल धूसरित शरीर में है, धूल फूल लगा है, कुछ मिट्टी पिट्टी खाया होगा, मुँह वैसे लाल निकला है, सब लगा है ऐसे करके, कुंचित केसम, इसी प्रकार से धूल मंडित हो करके दौड़ के सीधा माँ बुला के, भैया को बुला के लाओ प्रसाद होगा, तो दौड़ कर चले जाते थे, सीधा जाके स्कूल में घुसते थे, पाठशाला के अंदर से सीधा क्लासरूम में घुस जाते, सीधा घुसते थे सीधा। कई स्टूडेंट वो भी देखते हैं, आगे बच्चा आ गया कैसे, टीचर भी देखते हैं कैसे आ गए, अब सीधा और किसी के पास नहीं जाते, टीचर को परमिशन नहीं पूछना, नहीं और किसी को पूछना नहीं, सीधा जा करके दादा के पास, दादा बैठा था एक गमछा ओढ़ करके, उनका भी तो कपड़ा वपड़ा नहीं था, एक पहनते थे धोती गमछा, पहने हुए गमछा डाले होंगे, तो क्योंकि तभी जमाने में सिलाई टेलर तो होते नहीं थे, ऐसे जाके उनके वस्त्र पकड़ कर, उतरी पकड़ करके, दादा चल, माँ बता चल, खाना भोजन करना है चल, और वो देख रहा है कि सारे स्टूडेंट मुझे देख रहे हैं, टीचर देख रहे हैं, ये क्या, अब घर में आ गया भाई, आ गया ऐसे आके तंग कर रहा है, वो बोले तू रहा चलेंगे, नहीं चल चल रहा है। अब ये लीला को टीचर भी देख रहा है और स्टूडेंट भी देख रहे हैं, देख करके इतने तन्मय हो गए, इतने कृतार्थ हो गए, बोलते हैं कि भैया तो थोड़ी देर और बैठो, वो थोड़ा खींचा तना और थोड़ा चलने दो, तो दैट सीन इज सो एनचेंटिंग, इतने बढ़िया आकर्षक दृश्य है, वो खींच कर ले जाते, नहीं चल चल करके उठ कर वो चले जाते हैं तो डिस्टर्ब कर रहा है। लेकिन बाद में उनके टीचर, उनके जितने छात्र, सारे पोथी खाता बंद करके वहीं देखते हैं, आहो चला गया, सीन अप हो गया। दूसरे दिन आता है, बोले नहीं तुम ऐसा करो, आज भी उनको बुलाओ, आके तुम बुला के ले, हम अभी तक जितने पढ़े लिखे, जितने सूत्र याद किए, लगता है कि वो सारे बेकार है, इसी को देखना ही सार है, ये बाकी सब असार। तुम्हारे छोटे भाई आकर के तुम खींचे, हम इनको देखे लगता है कि ओ हो हो वही आत्म प्रसन्न हो जाता है, इस विषय सचमुच प्रसन्न हो जाता है। भगवान कर बाल गोपाल लीला के करते हैं अपने उसको खींचना, ये कोई साधारण थे। तो इसलिए भगवान के साथ संबंध हो जाने से आत्मा सुप्रसिद्धति, आत्मा सुप्रसन्न हो जाएगा। ये तो एक टेलर था, भगवान ने बालक हमेशा आकर भाई को गमछा पकड़ कर खींचे, इतने से बड़े बड़े भागवतकार पंडित आचार्य समेत खींच गए। अरे अभी तक इतने श्लोक को चर्चा याद के कुछ नहीं, इसी में खींचे जाते हैं साक्षात परमात्मा की दादू से। तो इस प्रकार से तो कितने सीनियर थे। तो अब भगवान जब प्रकट हुए नवद्वीप में, आचार्य तो प्रकट कराए उनको, लेकिन यो रहे थे शांतिपुर में, और महाप्रभु का प्रकट हुआ आप जहाँ से आए मायापुर में, वहाँ से लगो 2-2.5 घंटे का रास्ता बाइक बस। तो जिस दिन प्रकट हुआ उनको तो पता चला, वही तो कराए भाई, जो उपादान कारण है उनको किसी को पता नहीं चलेगा प्रकट हुआ। तो हरिदास भी आ गए थे इधर, नामाचार्य भी उनके साथ थे, हुंकार करके कीर्तन करने लगे दोनों अपना आपको ठरा ठरी भाषा में बोले हो गया काम, आवरा प्रोडक्ट फाइनलाइज्ड, प्रोड्यूस हो गया। अरे खूब हुंकार करके नाचने कीर्तन, सब गांव वाले बोलते क्या हो गया नाचने, अरे ग्रहण हो रहा है स्नान करने जाएंगे सिंहासन का। लेकिन उनका कारण कुछ और था, खूब नृत्य कीर्तन किए करके अब उनके पत्नी की बुलाए, दया कर सीतापति अद्वित गोसाई तब कृपा बले पाई चैतन्य नीता। अद्वितचार्य की कृपा से ही भगवान प्राप्त होते हैं। कविराज गोस्वामी चरितामृत में वर्णन करते हैं कि अद्वित की महिमा, अद्वित के तत्व तो कोई जान ही नहीं सकता, असंभव है जानना, लेकिन केवल एक ही उपाय है, क्या ना, अद्वित की कृपा से ही ये अगम्य अद्वित तत्व को जान सकता है, अद्वित कृपा से केवल ही कारण है। तो इसलिए कहा गया है कि उनकी कृपा ही कारण है। तो उन्होंने अपने पत्नी को बुलाए, सीता देवी को बोले देखो आप जाओ सची के वहाँ, जगन्नाथ मिश्र के वहाँ उनका बेटा हुआ है, जाओ सर समन लेकर के जाओ। तो सीता माता ने, सबसे सीनियर मोस्ट लेडीज थे, तो उन्होंने अपने परिकर और सारे समन, कई प्रकार के समन सब लेकर के वहाँ से महापुर गए सची माता के वहाँ। वहाँ जा करके सारे जन्मोत्सव का सारे कार्यक्रम संभाले, स्वयं लीड किए, और अंततः फिर नामकरण में उन्होंने नाम रखे। बाकी नीलांबर चक्रवर्ती आदि बड़े बड़े ब्राह्मण पुरोहित सब आए थे, और राशि नक्षत्र के अनुसार जो नाम पड़ा उसी नाम के अनुसार नक्षत्र नाम विश्वम्भर रखे, लेकिन वो नाम चला ही नहीं। जो सीता माता ने नाम रखे वही नाम पब्लिकली चला, वो नाम रखे निमाई। बोली बाकी सारे लड़की इतने हो गए सब मर गए, तो इतना कड़वा नाम रखेंगे ताकि किसी का नजर ना पड़े, तो लोग नीम के पेड़ के नाम से निमाई नाम रखे, वही नाम अभी तक की सबसे प्यारा नाम है। अद्वित गृहिणी सीतापति ने भगवान के नामकरण में किए, और अद्वित आचार्य बोले कि वो नहीं जा रहे थे मिलने के लिए, स्वयं भगवान को बुलाए, जानते सब कुछ, नहीं जान रहे थे, जा रहे थे, अपने पत्नी को भेजे, बार्थडे फेस्टिवल हुआ, सब कुछ हो गया, भगवान और भी बालक रूप में धीरे धीरे बढ़ने लगे, तभी नहीं जा रहे थे, कई साल तक नहीं गए मिलने के लिए, लेकिन हृदय विकल हो रहा है। तो जा करके वहाँ एक पाठशाला खोले घर के पास, शिवास आंगन के पास, वहीं स्कूल खोले, वहीं भी देख रहे थे, लेकिन फिर भी स्वयं नहीं जा रहे थे उनके घर मिलने के लिए। उनका मन में एक जिद लिए, बोले अगर सचमुच वही मेरे प्राण के ईश्वर है, वही मेरे प्राणनाथ है, जिनको मैंने बुलाया वैकुंठ से, वही अगर वैकुंठपति मेरे ईश्वर है, तो मैं नहीं जाऊंगा, वो मुझे बुलाएगा, अगर मैं उनका दास हूँ, अगर मैं उनका नौकर हूँ, तो मालिक मुझे एक बार बुलाएगा, वही मुझे बुला करके साक्षात दर्शन देगा, मुझे कृपा करेगा, और कृपा कैसे करेगा, मुझे तो बुलाएगा, एक दूसरा मेरे सर के ऊपर उनके श्री चरण धरेगा, तब मैं मानूंगा कि वही मेरे प्राणनाथ। वो किसी को बोलने अपने मन में ठान करके बैठे थे, किसी को नहीं बता रहे थे, बोले अगर मेरे प्रभु सचमुच ईश्वर वही है, नहीं है तो पता चल जाएगा, नहीं है, मैं किसी को नहीं बोला, मेरे मन में संकल्प, मैं तो नहीं जाऊंगा, कसम खाकर नहीं जा रहे थे। नहीं, इतने साल हो गया महाप्रभु को उम्र 12-15 साल होने वाला, तभी नहीं जा रहे थे मिलने के लिए, बहुत विकलता था, नहीं जब ना जब वो खुद बुलाएगा, बुला करके इसे श्री चरण मेरे सर में रखा, तब मैं मानूंगा कि वही मेरे साक्षात ईश्वर वही ऑथेंटिक है, ओरिजिनल वही है, मैं जिनको ईश्वर का माना था। तो इतने साल तो नहीं जा रहे थे, बैठे थे, देखते हैं सही है कि नहीं। तो एक दिन महाप्रभु जी, चेतन महाप्रभु शिवा संगन में आकर के आपने ईश्वरीय लीला प्रदर्शन किए, अपने महाप्रकाश कर रहे थे, तब बोले शिवास के एक भाई थे रामाई, बोले रामाई जाओ अदित्य को बुढ़ा के बुला कर लाओ, और उनको बोलना कि मैं बुलाया करके, इतना दिन से आ नहीं रहा है मेरे पास, जाओ उनको बोलो मैं बुला रहा हूँ आए करके। रामाई महाप्रभु का आदेश, वो तो शिवास के जो चारों भाई थे वो तो अपने आप को सब कुछ मानते थे महाप्रभु का, उनके दास, उनके सेवा, उनके आदेश पालन करने के लिए जी जान लगा कर, जैसे महाप्रभु का आदेश मिला बड़े प्रसन्न होकर के नाचते नाचते आनंदित होकर के रामाई आने लगे, बोले चलो आज ये प्रभु का पास भी जाना होता है। आदित्य घर में आए दौड़ करके, आ करके वो आए तो रामाई को देखे के आनंद होकर आदित्य समझ लिए, वो भी तो अंतर्जामी है, वो समझ लिए कि बुलावा आया, आज तो मुझे मिलन भेंट होगा, आज मेरा मेरे प्रभु के साथ मिलन होगा, आज प्रभु के दर्शन होगा, इसलिए बड़े उन्मत्त होकर प्रसन्न होकर नाच रहे थे। रामाई आया तो उनको पूछे जान लो रामाई किस लिए आया, ना लगता था आपको सब पता है ना, फिर भी तो बताओ किस लिए है ना, इसे इसे निमाई ने बुलवाया, आपको मिलने के लिए बुलाया। अच्छा, तो ये बहुत खुश हो गए, सारे समन इकट्ठा के, कई दिन से इच्छा था मिलने का, आज ही काम बनेगा, कई सारे पूजा के द्रव्य, कई सारे उपहार भेंट के द्रव्य, कई सारे इकट्ठा करके कई लोगों को साथ में लेकर के निकले। बोले देखो तो बुलाया तो एक बात है, लेकिन सचमुच अगर मुझे बुलाएगा धर्म करेगा तो मैं ये नमाई आया, तो विचार करके जा करके रास्ता में नवद्वीप में और चंद्रशेखर आचार्य घर में जाकर रुक गए। बोले जाके बोल दो रामाई, बोलो कि वो नहीं आया दक्षर, नहीं आकर जाकर बोल दो। बोले मैं किसी ना जाकर बोलो आया नहीं, तो रामाई जाए वापस बोला प्रणाम के, बोला तू अकेला आया, वो कहाँ गया, ना वो आया नहीं, आया नहीं किसे, आया है किसी ने आया सबके सामने। तुरंत महाप्रभु उठे, बोले उनका घर में छिपा है, आया नहीं, आप गए हो तो पकड़ लिए, तो चर मान लिए, तो 100% वही मेरे प्राणनाथ है, मुझे पकड़ लिए, बुलाए, अब गए, इतने प्रसन्न हो गए। नहीं तो और एक बाकी पॉइंट रह गया कि श्री चरण मेरे शरण में सिर में धारण करेंगे, और जा करके तक दिन के वो बोल नहीं रहे थे, तो महाप्रभु बोले अरे अद्वित तू क्या सोच रहा है, मैं नहीं पहचानता तुझे, तू मुझे बुलाया, बुला कर रखा, तू वही से बोल रहा है, तू यही मुझे टेस्ट लेना चाह रहा था ना कि मैं आपको बुलाऊं, बुलाया ना तुझे, तू छिप कर कैसे रहेगा, लेकिन एक पार्ट, दूसरी पार्ट है, तू मेरा कृपा आशीर्वाद लेना चाहता है ना। ये बात सुन करके उदय चरे धड़ाम करके चरण में गिरा, जैसे प्रणाम कर गिरा तो भगवान ने अपने चरण कमल उनके सर के ऊपर धर दी, और आदित्य तो इतने उत्फुल्ल हो गए, आज उनका मनोभीष्ट पूर्ण हो गया, आज कन्फर्म हो गया, ही इज दी सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, जो छोटा बालक नहीं, इतने प्रसन्न चित्त हो गए, उन्होंने नृत्य करने लगे, और बाकी दूसरे कोई समझ नहीं पा रहे व्हाट इज गोइंग ऑन हियर, लेकिन वो दोनों को समझते हैं, हाँ, और मालिक और सर्वेंट वो समझते हैं क्या प्रोजेक्ट चल रहा है, बाकी को इसी को पता नहीं चल रहा। तो इतने प्रसन्न, लेकिन महाप्रभु सोचे ये मेरे से इतने सीनियर है, उनको मानो उनका इच्छा पूर्ण करने के लिए मैं तो कर दिया सबका सामने, लेकिन ये दिस इज नॉट गुड। ये सारे लोग देखे बोले उनके पिताजी से भी सीनियर है, आचार्य है, टीचर है, सब कुछ है, वो उनको चरण अपने सर में रखते हैं, तो लौकिक रूप से कह। तो इसलिए भगवान भी सोचे नहीं नहीं वो मेरे गुरु तुल्य है। तो भगवान भी उठ करके नाचे, नाच करके पकड़ करके उनको चरण पकड़ करके अपने सर में रखते थे और लेते थे। बहुत कंपटीशन होता, लेकिन वो यंग थे, ये बूढ़ा हो गए थे, हो नहीं पाता था, कसरत में नहीं जीत पा रहे थे। तो इस प्रकार इतने संबंध था अद्वैताचार्य के महाप्रभु के साथ। प्राय महाप्रभु के जितने लीला, नवद्वीप लीला कहो, लाच लीला में भी अद्वैत की तो साथ है ही है। यहाँ तक वर्णन किया जाता है, एक महाप्रभु आराधु ही प्रभु, जो ईश्वर तत्व में आते हैं, जो हमारे स्मरण सेव्य तत्व हैं, जिनको हम सेवा करेंगे, पूजा करेंगे, वो कौन है? एक महाप्रभु तो साक्षात परमेश्वर है, और उनके दो लेफ्ट एंड राइट श्री नित्यानंद प्रभु और श्री अद्वैताचार्य, ये दो प्रभु हैं। बाकी तो सेवक तत्व में जाते हैं, गदाधर शक्ति हैं और शिवास पंच तत्व में भक्त हैं, लेकिन ये दो महाप्रभु के लेफ्ट एंड राइट भगवत तत्व में आते हैं। तो अद्वैताचार्य साक्षात ईश्वर तत्व है, उनके आविर्भाव तो ईश्वर तत्व की जैसा माना चाहिए, जैसे हम रामनवमी, जन्माष्टमी, नरसिंह चतुर्दशी, वराह द्वादशी, वामन द्वादशी आदि करते हैं, ठीक इसी प्रकार अद्वैत सप्तमी, इस माघ सप्तमी की तिथि में से अद्वैताचार्य भी साक्षात महाविष्णु प्रकट हुए थे। साक्षात महाविष्णु उन्हें, और जो जानते हैं वही पहचानते, भगवान पहचानते बोले तू तो वही है, रोज जानते हैं भगवान कौन है, दोनों दिनों को पहचानते हैं। लेकिन भगवान क्योंकि भक्त अवतार में आए, भक्त रूप में छिप करके आए, तो इसलिए उनके परिकर भी अपने आप को छिपाते हैं, और साक्षात महाविष्णु होकर भी अपने आप को गुप्त रूप में, एक दास के रूप में, एक भक्त के रूप में अपने आप को रखते थे। लेकिन जब से ये प्रास्टाइम हुआ, वो कन्फर्म हो गए, इसे पहले तो पता था कि महाप्रभु उनको बुलाए और उनके पास, उसी दिन से अद्वैत और चैतन्य हमेशा एक साथ रहने लगे, हमेशा हर लीला में, हर कीर्तन, हर पास में रहने लगे अद्वैत के साथ महाप्रभु का। और अद्वैताचार्य को महाप्रभु हमेशा अपने परिष्ट करके मानते थे, बहुत सम्मान देते थे। एक बार तो कई कीर्तन लीला में साथ में रहते थे, और हमेशा जब कीर्तन होता था तो महाप्रभु खूब उनको सम्मान देते थे, अद्वैताचार्य जैसे आगे आसन छूटकर खड़ा होना, सम्मान देना, लेकिन अद्वैताचार्य को पसंद नहीं होता था, बोले वो मुझे सम्मान क्यों देते हैं, वो तो मेरे ईश्वर है, वो मेरे प्रभु है, वो मुझे उठ के सम्मान देते हैं, मुझे प्रणाम करते हैं, मेरे को वो बहुत खराब सोचते थे, लेकिन मानते नहीं, कितने मना करने पर रोकने पर भी नहीं मानते, नहीं मानते तो अद्वैताचार्य बोले कि ये टू मच, बहुत हो गया, सबके सामने मेरा खूब बेइज्जती कर रहे हैं, मैं भी सबके सामने प्रमाण करके दिखाऊंगा कि वास्तविक मैं दास हूँ, वो मालिक है, मैं मालिक नहीं हूँ, मैं केवल उम्र ज़्यादा है इसी वजह से मैं नहीं हूँ, यही वास्तविक मेरे प्रभु है, वो मेरा दास हूँ, लेकिन पब्लिकली हमेशा मेरा पूजा करता है, सम्मान करता है, वो क्या करो, बदला लेने के लिए एक बार अद्वैताचार्य फिर वापस आ गए, बोले नहीं अब वापस नहीं, आ करके अपना शांतिपुर आ गए, वहाँ यहाँ आ करके अब अपने पत्नी थे सीता देवी थे, और आकर के अपने घर में रहने लगे, बोले नहीं मैं अब अपना स्टूडेंट थे, टीचर थे, तो आचार्य स्टूडेंट आए, बोले आपको भी नया किताब पढ़ाएंगे, पाठ लगाएंगे, कौन सा पाठ, योग वशिष्ठ, इस शंकर भाष्य है जिसमें भगवान को निराकार निर्गुण निर्विशेष व्याख्या किया गया है, माने तो ये योग वशिष्ठ शंकर प्रणीत इस ग्रंथ को लाए, बोले वही पढ़ाऊंगा, आचार्य जो पढ़ाएंगे से पढ़ाएंगे। अब वो पढ़ा के लोग बोला देखो ईश्वर का कोई गुण नहीं है, कोई आकार नहीं है, कोई नाम नहीं, ये सब इसी से बोलते हैं, इसे करके भागवत के साक्षात प्रचार कर रहे थे, प्रचार करता, लेकिन जान बुझ करके कोर्स चेंज कर दिए, सिलेबस चेंज कर दिए स्कूल। अब वो बात किसी ने जा करके, कई भक्त लोग आए आकर देखे कि ये अद्वितीय, ये क्या बोल रहा है, ईश्वर निराकार है, और जाकर कंप्लेन कर दिया। महाप्रभु के पास पहुंच कर बोला गुरु जी, वो भी तो पढ़ा रहे थे, टीचर थे, वो भी अपना यहाँ नवदीप में पढ़ाने वाले। बोले ये तो आचार्य जी तो निराकर व्याख्या कर रहे हैं, जोग वशिष्ठ पढ़ा रहे। बोले क्या ऐसे करा ना, और उनके स्टूडेंट ज्यादा तो आचार्य ऐसे पढ़ा, तो उनको सुन करके महाप्रभु को तुरंत गुस्सा क्रोध आया। नित्यानंद प्रभु बोले देखो ये आचार्य क्या कर रहे हैं, गड़बड़ कर रहा है सारे, कैसे ऐसे कर सकता है, कैसे ऐसे कर रहा है ना, आप जाने वो जाने भाई, अपना रिलेशन ना, मैं तो उसको छोड़ूंगा नहीं, ऐसे कैसे कर सकता है, मैंने सुना कि इसे पढ़ा रहा है ऐसा कर। चलो वो यहाँ से निकले दोनों भाई, निमाय और निताय दोनों निकले, निकल करके दौड़ कर आए, रास्ता में कुछ और भी पास टाइम किए इधर उधर करके, गंगा पार करके आ गए, तैर करके। बोले नौका में जाने के लिए टाइम नहीं, दोनों स्विमर है। अच्छा स्विमिंग, आप लोग तो स्विमिंग नहीं जानते लेकिन वो तो यहाँ गंगा तटवर्ती हैं तो अच्छा स्विमिंग करते। दोनों स्विमिंग करके आ गए, स्विमिंग करके गंगा पार करके अशांतिपुर में आ गए, और आकर पहुँचे तो स्कूल चालू था, क्लास चालू था और जैसे देखे कि दोनों भाई आ रहे हैं, तो चल देख लिए, अब थोड़ा साउंड वॉल्यूम बढ़ा दिए, देखो ये कुछ नहीं, ईश्वर विश्वर होते नहीं, ये सब शून्य है कुछ नहीं। हाँ ऐसे बोले, अरे साक्षात ईश्वर जब उनके सामने ही बात कही सुना करके, अब बोले तू मेरा प्रचारक, मेरे पार्टी के लोग हो, ये क्या कर रहे थे, आंटी पार्टी प्रचार कर रहा है। महाप्रभु तो सुन करके देख करके पूरे क्रोधित मूर्ति को लाल पड़ गए। बोले नहीं तू आचार्य, तू ऐसा कर रहा। नित्यानंद प्रसाद बोले देखो सिपात ये क्या कर रहा है ना, मैं देख सुन रहा हूँ, तो वाली मड़ाकर बोल रहा है, ये सिर्फ आपके सामने आपको नकारता है, अरे ऐसा है। और महाप्रभु का क्रोध संवरण नहीं कर पाए, आए दौड़ करके चिल्लाने लगे, तो कैसे इसे कह सकता है ऐसे, कैसे तो और जोर से बोलने लगे, अरे ईश्वर कुछ नहीं होते, कोई रूप ऐसे नहीं होते। आप देखे नहीं, क्लास के बीच में घुस गए, शिष्टाचार ही भूल गए, भगवान भी परम शिष्ट है, परम शीलवान है, लेकिन शिष्टाचार भूल गए आज क्रोध में। जब आपने आदमी गड़बड़ करता है ना, जिनके ऊपर में अनेक श्रद्धा अनेक प्रेम, जिसको सचमुच अपना मानते हैं, उनका गड़बड़ी सहन नहीं होगा, उसको तो एक्शन लेंगे, बोली हाउ कैन यू डू लाइक दिस। अब महाप्रभु क्रोध समरण नहीं कर पाए, क्लास के अंदर घुस गए, क्लास रूम में ही घुस करके चिल्लाते हुए गाली देते हुए जाकर अद्वित को छोटी दाढ़ी था उसका पकड़ कर खींच लिए, शेयर से खींच लिए, अरे तराम तराम दो तार चाटा लगा, वो तो नीचे गिर गया, गिरा करके मारे अद्वित आचार्य चाटा खा करके उठ के फिर नाचने लगा, ओ आज मिल गया मुझे, आज मिल गया, टुडे आई गॉट, आज मुझे मिल गया। वो खींच करके मार रहे थे, उनके पत्नी सीता देवी थी, बोले बूढ़ा मर जाएगा यार, ऐसे ही 50-60 साल की उम्र में मर जाएगा, छोड़ दो आप यहाँ क्या करो, तो उठा कर मार रहे थे। लेकिन आदित्याचार्य मार खा करके खूब नाचने लगे, गाल फूल गया था मार खा के, फिर महाप्रभु देखे मेरे से मार भी खा रहे, गाली खा रहे, नाच रहे आनंद होकर के, पूछे नहीं तो क्या हो रहा है, मैं इसको पीट रहा हूँ मर रहा हूँ फिर भी खुश हो रहे हो तो। बोले यही तो रस है। उनको पूछो क्यों खुश रहा है, बोला क्या ना वो आज मैं जो मनोभीष्ट था आज पूरा हो गया ना, क्या पूरा हो गया ना, जो मालिक वही तो डांटेगा पिटेगा और कौन करेगा, आप मुझे हमेशा मेरा सम्मान कर रहे थे, पैर छू रहे थे, आज आकर पिटा क्या ना पब्लिक, मेरे स्टूडेंट के सामने मारा, सबके सामने पब्लिकली ये प्रूव कर दिया कि यू आर दी मास्टर, आई एम दी, यस आपका डांटने पिटने का अधिकार है आपने किया। तो श्री अद्वित आचार्य केवल कहने के नहीं थे, केवल मानते नहीं थे, कहते नहीं थे, मैं चैतन्य का दास, मैं चैतन्य रदास, दास रनुदास, वो करके दिखाए, प्रमाणित सभी के, अपने जूनियर स्टूडेंट के सामने प्रमाणित कर दिए कि देखो अगर जीवन में कुछ सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, कुछ लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं, तो ऐसे मान्यता क्रिया सभी में करके दिखाओ कि भगवान के दास हो आप, मानो भी और ऐसा करो भी। जरूरत पड़े तो मार खाकर भी प्रमाणित करो कि आप दास हो, ऐसे करके भगवान के दास और कुछ नहीं हम लोग, ऐसे स्वीकार करो। इस प्रकार से भगवत दास्य को प्रचार करते थे, कई प्रकार छल से अपने आप को दास मनाते थे। इस प्रकार इस स्थान में अद्वैत केसरी पाठ स्थान है, यद्यपि जन्म स्थान और कहीं था लेकिन कर्म स्थान वही था। अपने साधना, अपने उपासना, अपने पूजा प्रचार वही उनके हेडक्वार्टर था शांतिपुर। शांतिपुर नाथ सीतापति, शांतिपुर गोसाई, अद्वैत गोसाई उनको माना जाता था, जिन्होंने मुख्य कारण है भगवान को लाए, जिनके कारण में हम लोग का ऐसा हुआ। अगर और ना प्रयास करते तो हम लोग का आज कहाँ पर, उन्होंने किया। तो उन्होंने यहाँ पर अनेक अनेक लीलाएँ हुआ, जैसे तो एक तो इस प्रकार किए, और कई बार जो महाप्रभु ने बाद में संन्यास लिए, निमाई ने 26 साल में जो घर त्याग दिए संन्यास लिए, तो नवदीप तो संन्यास के बाद बहुत रोने लगा। संन्यास लेके चले गए तो नित्यानंद प्रभु प्रमिच के सबके सामने बोले, नहीं नहीं मैं लेकर आऊँगा बुला करके उनको। तो हफ्ता दिन के बाद में नित्यानंद प्रभु अद्वित महाप्रभु को कुछ मैनिपुलेट करके ये करके ले आए, घुमा फिरा करके बोले ही गंगा जी वृंदावन करके यहीं ले आए, शांतिपुर ले आए। अद्वित चर के पहले खबर भेज दिए थे, कपड़ा वपड़ा है नहीं कुछ, एक कोपिन बहिर्वास लेकर के आओ, नौका लेकर आओ, मैं लेकर आ रहा हूँ उनको, नहला धुला के ले जाएंगे, प्रथम खाएंगे संन्यास के बाद। प्रथम कोई गृहस्थ के घर में भिक्षा लिए तो हे अद्वित आचार्य महाप्रभु जो संन्यास आश्रम ग्रहण किए, उसके बाद में 3-4 दिन तक तो खाए नहीं थे, इसी रात दिन कीर्तन करके अहो रात्र नाचते थे गाते थे वृंदावन जाने के लिए, कुछ खाना पीना नहीं था। तो उनको कंट्रोल करने के लिए उनके साथ में केवल नित्यानंद प्रभु थे, बाकी कौन इतना संभाल पाएगा, वही संभाल के लाए। सबसे पहले भगवान संन्यास आश्रम के बाद जो भिक्षा ग्रहण किए वही महासौभाग्यवान गृहस्थ आचार्य से अद्वित थे, वही शांतिपुर इसी जगह पर आकर के महाप्रभु प्रथम बार संन्यास आश्रम के बाद भिक्षा ग्रहण किए और स्नान किए गंगा में। गंगा में स्नान करके अद्वैचार्य उनको नया वस्त्र दिए, वस्त्र दान किए, स्नान करने के बाद वस्त्र माल्य दे करके पूजा घर में ला करके बोले बैठाए प्रसाद देने के लिए। उनके साथ में और कुछ आए थे प्रसाद देने के लिए, वहाँ बैठे तो नितान्त तो साथ में थे, बोले ठीक है आप भी साथ में हो, जैसे किसी को इन्वाइट करें उनके साथ में दो चार होंगे, बोले उनको भी प्रसाद देना ही पड़ेगा, ये तो भाई ये कट सी। तो उनके साथ में जितने थे बैठे, बोले बाकी जो थे मुकुंदा आदि तो बाहर बैठे, बोले पहले सीनियर लोग खा लें, सेकंड बैच में हम पा लेंगे। तो महाप्रभु तो सन्यासी थे और उनके नित्य परिकर संगी थे नित्यानंद, बोले दोनों को पहले प्रसाद हो जाए। तो अद्वैचार्य भी जाने थे, ये दोनों सीनियर मोस्ट उनको प्रसाद खा ले, बाकी प्रसाद बांटवा देंगे सेकंड बैच में सब मिलेगा। तो उनको अद्वैताचार्य ने यहाँ बुला करके अपने घर में खूब सीता देवी और अद्वैचार्य स्वयं खूब प्रसाद बढ़िया बनाए थे, बहुत वैरायटी के बढ़िया प्रसाद बना करके महाप्रभु को मन के हिसाब से बना करके उनके थे। अद्वैचार्य की जो षड़ग्रम शिला पूजा करते थे, जिनको पूजा करके भगवान को प्रकट कराए, वो शिला तो था ही, षड़ग्रम शिला नारायण शिला पूजा करते थे, लेकिन अभी जो भोग लगाए, अभी एक तो पत्तल था और ये लगा कि आज ही उनको बैठा दिए भोग, तीनों में तुलसी पत्ता लगाए और व्यंजन सजा कर रखे, नारायण के भोग लगाने के समय में उनको बुलाकर बैठे आकर बैठो। महाप्रभु बोले भाई अब हम भोग थोड़ी खाएंगे, हम तो प्रसाद खाएंगे, अब प्रसाद बोले भोग अर्पण करो। नहीं नहीं बैठो क्यों, अद्वैचार्य बोले भोग अर्पण की शुक्र है, आप तो साक्षात ईश्वर हो, आपको ही अर्पण करूंगा, ये संग्रहण थोड़ी करूंगा, वो करूंगा लेकिन आपको ही करूंगा। और माने नहीं, जबरदस्ती उनको बैठा करके आसन से नित्यानंद प्रभु को और महाप्रभु को और शिला को स्वागम सब तीनों को एक साथ में भोग अर्पण किए, एक साथ में बैठे, को जानते थे ये ईश्वर तत्व है, वही जानते थे, उन्होंने भोग अर्पण कराए और करा करके बोले अब प्रसाद पाओ, साक्षात इसी में पाओ, तो आपको उन सब ट्रांसफर थोड़ी करना है, हम लोग को प्रसाद ट्रांसफर कर दो हम खाएंगे, ट्रांसफर नहीं आप तो सेम मेन वही प्लेट में खाओ, तो जो बात देखे महाप्रभु बोले समझ गया मैं, तो पाना ही पड़ेगा। लेकिन नित्यानंद प्रभु बोले देखो अब हफ्ता दिन तो भूखे पेट पिचक गया, भूखे रह रख रहे, सोचा कि आज पहली बार कोई गृहस्थ के घर में होम क्या बोलते हैं हम प्रोग्राम है तो वहाँ प्रसाद लेंगे तो प्रसाद लूंगा। लेकिन ये क्या, ये इतना ही प्रसाद? मैं भाई देखो बहुत भूख है, ये तो मुझे पेट नहीं भरेगा ना, पाओ तो से पहले पे पाऊँ क्या, आधा पेट खाऊँ क्या? जब खाऊंगा तो पेट भर के खाना चाहिए भाई। जब बुलाया हाउस प्रोग्राम में घर में बुलाया भोजन के लिए तो कम से कम पेट भर के खिलाना चाहिए। ये क्या आधा मिल खिलाएगा मैं आधा खा, ये नहीं है, मैं नहीं खाऊंगा आधा पेट भोजन, भर पेट भोजन देगा तो नहीं। अरे पाओ तो सही, पाओ क्या ऊपर है कि नहीं कंफर्म कर दो, इतना ही दिया इतने मेरे तो होगा ही नहीं। तो अद्वैचार्य बोले देखो भाई तू ब्राह्मण है या राक्षस है? भाई मैं ब्राह्मण परिवार हूँ, मेरे जितना कैपेसिटी है मैं इतना 5 किलो भोग लगाया और तू 2 क्विंटल खाऊंगा, मैं कहाँ से ला कर दूँ? मेरे घर में जितने स्टोर में था मैं तो इतना दिया, इतना तो पाकर संतुष्ट हो ना। नहीं नहीं मैं इतना कम मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं क्या खाऊँ? अरे पहले खाना नहीं खा, अब आधा पेट थोड़ी खाऊंगा, इतने दिन से भूखे घूम रहा हूँ, आज बड़े इच्छा था कि आज हाउस प्रोग्राम में जा रहा हूँ किसका हेल्प करूँगा, हाँ तू अभी भी इसी दिन तो मैं इसे नहीं खाऊंगा, बैठ के भाई मैं नहीं खाता। अरे आप नहीं खाएंगे तो वो भी नहीं खाएंगे, खाओ बैठ करके मैं इतना कम नहीं खाऊंगा, पेट नहीं भरेगा मेरा। महाप्रभु बोले यार भाई हम लोग बैठ बस शुरू करो, हम तो खाते हैं ना, चलो फिर खाते हैं, कम पड़ेगा तो ना लाएगा, बस शुरू करो तो बैठे फिर प्रसाद पाए, प्रसाद पाए तो अरे चल फिर ला कर जो जो आइटम सर्विस करते थे लेने के लिए आते थे तो उनको बोला क्या कि इतना थोड़ा ला कर देता है करके। महाप्रभु पा रहे हैं प्रसाद, इतना हटात प्रसाद पाते थे आधा पा करके ये थोड़ा डाल राइस मिला करके उसको बोले बेकार जो आ जाए घर में बुलाया खाने के लिए थोड़ा सा लाइक खिला रहे इसमें क्या होगा। तो अधिकारे के शरीर में सारे झूठा दाल राइस सब लग गया उनके शरीर में, अधिकारे बकेट रख दिया सर्विस के नया तो बोले अरे पता नहीं मैं ब्राह्मण हूँ झूठा फका मुझे, आचार्य ब्राह्मण हूँ इतना मोटा जेन्यू डाला है तो खा करके आधा झूठा फेंका, मैंने झूठा कर दिया असुद्धि क्या एक तो नित्यानंद बोले ये ब्राह्मण खबरदार तो पंडित है ये नहीं पता महाप्रसाद झूठा होता है झूठा कैसे का। अब इसी प्रकार प्रेम कलह दोनों का इस प्रकार बड़ी सुंदर सुंदर घटना इस स्थान पर हुआ था। तीनों प्रभु मिल करके अद्वैत नित्यानंद और श्री चैतन्य महाप्रभु वो तीन प्रभु मिला स्थान देखा ना अपने अंदर जाकर यहीं बैठ करके भजन लीला उनका जो है बड़े अद्भुत मिलन अद्भुत प्रेम कलह। कविराज गोस्वामी कहते हैं कि उनको अगर सुन करके देख करके कोई मन में सोचेगा नित्यानंद प्रभु इज़ नॉट डूइंग गुड, ये ठीक नहीं कर रहे हैं, इतने सीनियर है झूठा फेंके उनके ऊपर इसे गाली दे रहे हैं, किनके घर में खाने के लिए आएगा भाई, जितना है देगा और कोई देगा कुछ, अभी से बोलते नहीं खाऊंगा कम क्यों दिया। अरे कभी कभी हम जाते हैं हाउस प्रोग्राम ऐसा करते भी हैं कभी कभी, हम देखें किसका घर में जाते हैं जो विशेष करके बंगाली उड़िया भक्त किसके घर में चले गए वो बेचारे पूरी राइस रोटी खाने वाले हैं हिमाचल प्रदेश चले जाते हैं और बेचारे राइस तो 250 ग्राम के आधा किलो करते हैं और एक एक भक्त हमने 2.5 किलो खाने वाले हैं वो क्या करेंगे बेचारे, वो जितना पूरा बर्तन ला कर लगा दिया वो तो एक मुट्ठी में उठा देता है वो बेचारा कंपनी है अभी चावल खरीदना पड़ेगा, अब इतने चावल खाएंगे पूरी बनना है हमको तो अन्ना खाना है, हाँ वो बाजार जाके दौड़ के आओ चावल लेकर आओ बनता है वगैरह वो पत्तल बैठा हुआ क्या ये हाल भी आज भी होता है। ये महाप्रभु के गण है ना अनुजाई लोग ऐसे भी करते हैं बदनाम करा देते हैं खाने के नित्यानंद लोग किए थे तो ये परंपरा रहा है आज तक भी लेकिन अरे चेहरा तो खरीब बंगे लिए होते जानते थे कितना बनना चाहिए, यहाँ तो रोटी पूरी नहीं किए होंगे वो तो प्राइस ही किए थे, लेकिन फिर भी वहाँ उनको घर में जो बुलाया था घर में उनको ही अपडेट कर रहे थे इतने कम बनाया वो क्या क्या सब। लेकिन कबीराज गोस्वामी कहते हैं वो उनका जो झगड़ा झाटी हो रहा है इसी में अगर कोई मन में कोई विचार सोचा है कि ऐसे कर रहे ऐसा कर रहे हैं महा अपराध हो जाएगा, क्योंकि हम दोनों को नहीं पहचानते हैं और पहचान भी सकते नहीं जान सकते, उनका स्तर, वो क्यों झगड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो केवल वही जान सकते हैं। हमारा क्षमता नहीं है, हम उनको सुन करके जान करके जो आनंद मजा ले लो, दोनों को प्रणाम करो, दोनों ही ठीक कर रहे, ठीक अच्छा ही कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि उनके स्थिति, उनके स्तर अलग है, उस तत्व को हम नहीं समझ पाएंगे क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या उनका उद्देश्य है, वो तो केवल वही जान सकते हैं। तो इस प्रकार साक्षात से अद्वैत। एक बार तो यहाँ पे अद्वैताचार्य गृहस्थ थे, उनके 6 पुत्र थे, एक पुत्र का नाम था अच्युतानंद। एक बार उन्होंने ऐसे डिस्कस कर रहे थे घर में, बोले सी निमाय पंडित जो चैतन्य महाप्रभु है, उनके गुरु तो ईश्वरपुरी है, ऐसी बात कर। तो अच्युतानंद बैठे थे, उनके बेटा बैठे थे, बोले पापा क्या बोला, उनके गुरु ये क्या बात कर रहे हैं, अरे ये तो साक्षात जगत गुरु है, उनका गुरु कौन हो सकता है, वो तो साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, आप कैसे बोल दिए उनको गुरु करके। तो अद्वैताचार्य मान गए, बोले बेटा तू मेरे से आचार्य गुरु है, तू मुझे सिख्या दिया, सचमुच वही तो जगत गुरु है। तो केवल अद्वैताचार्य नहीं, जो अद्वैताचार्य की सही शिक्षा को मानते हैं वो भी अद्वैताचार्य उनको ही स्वीकार करते हैं आचार्य करके, तो भी ऐसे योग्य योग्य पुत्र थे उनके, और उन्होंने भी एक बार केला भोजन किया, लीला मुझे याद नहीं आता, केला केला लाकर खाए थे ना, चापा केला खा गए ना, गौरांग महाप्रभु भोग लगाते लगाते सब खा गए। क्या क्या क्या, इधर आओ इधर आओ। अच्युतानंद ने बड़े सुंदर लीला यहीं पर किए थे, उनके बेटे ने, हाँ गोपाल, उनके कई पुत्र थे, गोपाल उनका बेटा था, वो महाप्रभु भोग लगा रहा था, भोग लगा रहा था ना,
और माता वो छुपा के रखे थे केला, तो वो केला खाने में, चापा केला खाने में, तो माता जी स्नान करने के लिए तो खा गया, खाते समय क्लिंग गोर है बोल के महाप्रभु को अपहरण करके खा
गया ना,
तो उसको मारा, मारने के बाद महाप्रभु बोल उनको लगा, तो वो तो मुझे अपहरण किया है, मैं खाया।
उनका एक बेटा जो अच्युतानंद थे वो भी तो सिखा दी, और दूसरा बेटा था गोपाल, तो उन्हें केला ला के रखे थे भगवान को भोग लगाने के लिए, वो बालक आ करके केला खा गया, सारे केला खा गया, खाते समय में क्लिंग गोरांग गोराए कहते आप ऐसा नहीं करने का। सारे फूड स्टॉक निकाल लेना जा करके, अब खा करके अब जाकर पकड़ लेते, भोग नहीं लगा, खा गया, प्रसाद नहीं चढ़ा, भोग खा गया, सब खा गया, वो बोलता कि नहीं भोग लगाया ना, भोग कहाँ लगाया, तो भोग छिलका उतारा नहीं, प्लेट नहीं लगाया, मंदिर में लिया नहीं, खा गया। तो उनको पिटाई किए, तो उनके जो पिटाई हुआ वो सारे गौरांग महाप्रभु के ऊपर गया, महाप्रभु फिर वाले मुझे क्यों मार रहे नारी, हम ना बोले वो तो मुझे भोग लगाया, अरे अभी नहीं। तो केवल अद्वैताचार्य नहीं, अद्वैत के पुत्र भी भगवान से अभिन्न थे, तत्व वो भी खाते तो भगवान भी खाते, वो दिखा दिए, गोपाल भी खाए तो भगवान भी खा गए, सीधा चिलकर अलमारी से निकाल कर खा गए, वो भी हो गए, है ना। नहीं तो इसलिए अब परिवेषण करने से पहले जो प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन सेवा में होंगे सीधा जाकर खा लो, बोलो हम खा लिए सब। नहीं करने का। तो इस प्रकार अद्वैत आचार्य ने ये उनके साधना स्थान रख करके यहीं से पूरे विश्व के विश्वम्भर को नियंत्रण करते थे। जब भगवान संन्यास लेकर के पुरी गए, पुरी में भी और तो पता नहीं, हर साल अद्वैताचार्य भी जाते थे भगवान से मिलने के लिए, वहाँ भी जब जाते थे पुरी में भी जाकर के महाप्रभु गंभीरा में रहते, जाकर उनको पूजा करते थे, तुलसी चंदन पुष्प दे करके साक्षात मंदिर बैठा कर महाप्रभु पूजा करेंगे, अद्वैताचार्य आरती प्लेट लेकर पूजा करेंगे, जैसे पूजा करेंगे, पूजा कर प्रणाम करेंगे, तुरंत महाप्रभु फिर पूजा शुरू करेंगे, अद्वैत को बैठा देंगे, फिर वो पूजा शुरू करेंगे, एक दूसरे को उनका पूजा खत्म हुआ वो उनको पूजा करेगा, उनका खत्म हो उनको पूजा करेगा, जतो दे ततो नहीं, तुम मुझे कम है भी इसे करूँगा, टिट फॉर टैट, वो भी स्वीकार करते थे, क्या करूँ वो छोड़ेगा नहीं, मेरा बारी मैं पूजा करूँगा, उनका बारी वो पूजा करेगा। ऐसे यहाँ तक तो एक बार जब वो महाप्रकाश लीला कर रहे थे शिवासांगन में, महाप्रभु ने सभी को अपने कृपा आशीर्वाद देते थे, सबको दे रहे थे, लेकिन सच्ची माता अपने स्वयं माँ थी, उनको नहीं बुला रहे थे। अब शिवा संगम जाएंगे क्या यहाँ से? अब कल गए थे,
परसों
गए थे, तो एक डिस्कस हो गया ये बात? तो वहाँ पे शिवा संगम के पास टाइम हुआ था, तो महाप्रभु सबको अपना कृपा आशीर्वाद देते थे, लेकिन सची माता दुखी बोली मुझे बुलाते नहीं बेटा, मुझे पूछता भी नहीं, सब आके रिक्वेस्ट किए, अरे प्रभु माताजी हैं बड़े दुखी हैं, उनको भी थोड़ा आशीर्वाद दीजिए, उनकी कृपा दीजिए भगवत स्वरूप। महाप्रभु चिल्लाकर बोले ना वो अपराधी नहीं है, वो अपराधी है, उनको नहीं, जगत जननी सची माता अपराधी, कैसे अपराध, क्या अपराध हो सकता है उनका, कैसे आपकी जननी है वो कैसे अपराध हो सकता, क्या अपराध बोले नहीं महाप्रभु, बोले अपराधी इसलिए नहीं कृपा करो। सीरियस सची माता सुनकर भी रोने लगी, क्या हुआ मुझे बता भी नहीं, पूछे पता लगाओ जाके पूछे, बोले क्या अपराध है, तो महाप्रभु बोले अद्वैत के पास उनका अपराध है, अद्वैत चरण में उसका अपराध है, अगर अद्वैत अनुकृपा नहीं करेंगे तब मेरा कृपा नहीं हो सकता, मैं उनको आशीर्वाद कृपा नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि अद्वैत चरण में अपराध है। जाके सची माँ को सची माँ बोले पता ही नहीं क्या अपराध किया, भक्त जाकर अद्वैत को पूछे, बोले महाप्रभु कहते हैं सची माँ आपके चरणों कुछ अपराध क्या है, अद्वैत ऐसे किए, सची माता मेरे प्रभु की जननी जगत जननी वो कैसे संभव हो सकता है, मैं उनके चरण के 108 बार धो करके पानी पीऊं तब भी कम पड़े, वो मेरे से अपराध कैसे कर सकते, असंभव है। बोले भगवान तो उनको कृपा नहीं करते, बोलते हैं कि आपके चरणों में अपराध, बोले नहीं 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 मैं तो नहीं जानता हूँ कुछ नहीं, मैंने तो नहीं, मैं माफ़ी मांगू, माफ़ी मांगने से क्या होगा, उनको माफ़ी मांगना, अरे ये कुछ मेरे माफ़ी मांगे, नहीं मानते, लेकिन भगवान कृपा नहीं करते थे, तो भक्त लोग जाकर बता, बोले आदित्य तो नहीं मानते हैं, आप नहीं जानते, लेकिन महाप्रभु कृपा तो जब भी करेंगे, जब भी आप उनसे आशीर्वाद लेंगे, तो कैसे लेंगे। वहाँ सची माता बड़े चिंतित रहे, क्या करूँ भगवत आशीर्वाद से वंचित रह जाऊँगा। तब जो कीर्तन उत्सव चल रहा था, आदित्य गए वहाँ कीर्तन नाच रहे थे, इतने कीर्तन नाचे थे, वो उनको बोले कि सची माता वो सुन करके संभाल नहीं पाए, गिर पड़े, कैसे संभव है, कैसे संभव है, गिर पड़े, तो इतने में सची माता चुप से जा करके, वो फेंट थे सेंसलेस थे, जाकर उनके चरण में हाथ लगा कर लाकर सर में लगा दी। जब ऐसे किए तब तुरंत महाप्रभु बुलाए, बोले अब माँ को बुलाओ, अब ऐसे गति से अब उनका अपराध माफ हो गया। तो इस प्रकार लीला करके भगवान ने हम लोग को शिक्षा देते हैं कि जान कर भी नहीं, अनजान में, अज्ञात सार में। अब फिर सची माता सोचने लगी, क्या निमाई के बाद में, निमाई तू मुझे पब्लिकली इसे करवाया, लेकिन मुझे तो पता ही नहीं क्या अपराध मैंने किया। बोले माँ तुझे पता नहीं, अपराध जानकर नहीं हुआ था, अब तुझे पता नहीं है तो करना कैसे। बोले जब भाई साहब हमारे विश्वरूप ने, अरे बड़ा भाई, जब संन्यास ले लिए, घर छोड़ के चले गए, जैन कर लिए जा करके, तब आपने कंप्लेन कर रहा था, लोगों से बोल रहा था, गाली दे रहा था कि आदित्य के पास गए, वही कुछ सिखाया लिखाया पढ़ाया, वही प्रीचिंग किया, इसलिए घर छोड़ के चला गया, जैन कर लिया जा करके। तो इसी वजह से तो आप उनको दोष दे रहा था, ये कंग्रेगेशन में बताना सब, भगवान ने इसलिए माता जी को बोले जैन किया करके तू उनको गाली दिया कि इनके वजह से उनके प्रीचिंग से जाके जैन कर लिया, ये मन में सोचा तूने, बोला किसी को नहीं है, ये मन में सोचा कि इसी कारण से तू जा करके जैन कर लिया, तो मन में जो भाव रखा इसी के कारण से अपराध हो गया, इस कारण से कृपा से वंचित हुआ। लेकिन आज अपना अनुतप्त होकर के मूर्छित अवस्था में आदत चेहरे थे, तब भी उनके चरण रज आपने स्तर में लगाया, तो इसीलिए मुक्त हो गया। आश्चर्य की बात, तो इसलिए महाप्रभु सिखाते हैं इस लीला में, इस अद्वित भवन में, कि कोई वरिष्ठ भक्तों को जो प्रीचिंग करके आपको वैराग्य वृत्ति में लाते हैं, भगवत भक्ति में लाते हैं, अगर और कोई जाने नहीं समझे नहीं किसी प्रकार से अगर उनके प्रति आक्रोश विचार मन में लाते हैं तब भी अपराध हो जाता है, और वो अपराध के कारण भगवत कृपा वंचित, भगवत का नहीं प्राप्त होता। और भगवान ने स्वयं अपने स्वयं माँ को भी, स्वमाता सती माता जगत जननी, उनको भी जब तक जा करके भक्तों के चरण धूलि शर्म नहीं लगाए तब तक आशीर्वाद नहीं करते थे। जब उनका ये स्थिति तो हम लोग कौन सा गाय के गोबर है, हम लोग का डीलिंग्स कैसा होना चाहिए, है ना। नहीं कभी कभी नहीं मन लगता है, कृपा मिल नहीं रहता, भजन ठीक से नहीं होता है, ठीक से बात ठीक से नहीं हो पा रहा है, समझो कहीं गड़बड़ हुआ। अब किसको ढूंढे, कितने लोगों का चरण देना चाहिए, अब कुछ तो करना पड़ेगा, है ना। नहीं भगवान इस प्रकार सिखा दे करके सिखाते हैं, तो ये सिखा क्योंकि आचार्य अद्वित है उन्हीं के द्वारा सिखा देते हैं। तो इस प्रकार सख्यात भगवान महाविष्णु से अद्वित आचार्य के रूप में हम जैसे कलिहत जीवों को उद्धार करने के लिए, हमारा कल्याण करने के लिए अद्वित के रूप में अद्वित आचार्य को प्रकट हुए थे, प्रकट होकर के ही आपने उनका लीला अपने प्रचार अपने साधन किए भगवान के साथ सख्यात भगवत तत्व में। तो आज उनके आविर्भाव तिथि है, तो हम महाप्रभु के गण है, उनके अनुयायी हैं। महाप्रभु और चैतन्य महाप्रभु अद्वित अभिन्न है, अद्वित है, अलग नहीं है। तो ठीक उसी ज्ञान में, ईश्वर ज्ञान में उनको हम स्तुति करेंगे, प्रणाम करेंगे, उनका आशीर्वाद की याचना करेंगे। और आज आविर्भाव की तिथि में उनके चरण में श्रद्धांजलि ज्ञापना करेंगे, ये प्रार्थना करेंगे कि आज के इस अद्वितचार्य अद्वित सप्तमी के पवित्र आविर्भाव तिथि में हम लोग अद्वितचार्य की कृपा, जिसमें हमेशा हमारे आचार्यगण कहते हैं कि अद्वित की कृपा का बहुत ही आवश्यकता है, कृपा की याचना करना चाहिए, इस अद्वित सिपाट के धूल को सर में लगा करके, मन को उनके चरण में लगा करके और पूरे एकाग्र चित्त में उनके चरण में ध्यान करके से प्रार्थना कीजिए कि अद्वित प्रभु कृपा कीजिए आपके आज आविर्भाव तिथि में आपके, कि जिस प्रकार आपके दस्य भाव था भगवान के प्रति, जिसके आपका करुणा था जीवों के प्रति, आप जिस प्रकार काय मन वाक्य में श्री चैतन्य के सेवा के लिए स्थित थे, ठीक इस प्रकार हम तो हो नहीं पाएंगे, लेकिन आप कृपा करेंगे तो कम से कम भगवत कृपा हम प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि आप कृपा से सची माता को भी कृपा प्राप्त हुआ। तो हम तो इसी के लायक नहीं है, लेकिन फिर भी आपके इस पाठ के धूलि को सर में लगा करके आपके चरण में प्रार्थना आज आपके तिथि में करते हैं कि अगर आपकी कृपा थोड़ा बहुत हमारे पर हो जाए तो हमारे जो थोड़े बहुत हमारे शक्ति बुद्धि सामर्थ्य कुछ भी है उसको गुरु गौरांग की सेवा में संपूर्ण नियोजित कर पाएँ, आजीवन उन्हीं के दास होकर के, उन्हीं के नौकर होकर के, उन्हीं के गुण नाम कीर्तन करके, उन्हीं के आदेश पालन करके, उन्हीं के लिए जीवन जी करके इस जीवन को बिता दें, यही आपके श्री चरण में श्रद्धांजलि ज्ञापन करते हैं, वही प्रार्थना करते हैं कि आपके कृपा से ये संभव हो पाए, ऐसे प्रार्थना सब करेंगे। श्री अद्वैताचार्य की, श्री अद्वैताचार्य शुभ आविर्भाव तिथि की, श्री अद्वैत सप्तमी की, श्री शांतिपुर धाम की, निताय गौर हरि प्रेमानंदे।